स्वास्थ्य कामाभितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय व्रजन समन्ते समते द्वैपायनो विरह कात्तर्यादिभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां यत् किं करेतु भवता खलु कासुदानि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्या कदारसमिधे विशुभाञ्जाय शतके विकुञ्जभवनं जलमरुदि
से बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों का ये सब संपन्न हुआ और निर्विघ्न रूप बाहर के विद्वान भी कह रहे हैं सप्ताह जैसा नहीं सप्ताह हम लोगों ने नहीं किया बल्कि ये दिखलाने के लिए किया कि लोग समझें जहां भागवत कैसे प्रवचन और ये सब चीजें होती भागवत के उसने देखा संत पुराण वालों में महात्म्य में कि भागवत का सार निकल गया इन पंडितों से मारे लोभी लालची और वो सब कुछ चाहते हैं यदि यहां पर की मुक्ति की कामना को भी छलना बतलाया गया यहां तक कि नारायण की भक्ति लक्ष्मी और नारायण की कृपा भी नहीं चाहते जहां रामचंद्र जी की तो बात ही क्या द्वारका भी इसकी मुक्ति कि कृपा भी हम लोग नहीं जो चाहने वाले भागवत की ऐसी कथाएं हैं और कि तो क्या ब्रज में भी हम लोग नहीं चाहते शांत दास सख वात्सल्य नहीं चाहते यहां तक कि हम लोग या भागवत का जो उद्देश्य है मधुर रस में भी कामात्मिका भक्ति के अंगत में हम लोग भजन नहीं करना चाहते तो बदलाव को कितनी बड़ी धारी थी इसकी कोई जगत में कल्पना नहीं कर सकता चंद्रावली जी आए जैसे तुम आ जाओ गोपी होकर के हमारे रहो कृष्ण की सेवा करेंगे हम लोग तो रूप और अभिनाश के अनुगत जो हैं ये नहीं लेंगे बतलाओ जी कितनी बड़ी भारी बात है, ये श्रीमद् भागवत देने वाले हैं और उसको दुपा चार पैसे में या दो चार लाख रुपए में ये बेच दें तो हम लोग भागवत का क्या पाया, क्या कुछ नहीं पाए। इसलिए वो भागवत का की महिमा नहीं जानते वे लोग, इसलिए भागवत का सार निकल गया। इसलिए आप लोग भी संसारी कोई भी कामना वासना न करें और रूपमंजरी के या रूप गोस्वामी के अनुगत्य के अतिरिक्त कोई भी चीज, ब्रज की भी कोई चीज, कोई लालसा न हो। इस चीज को केवल चैतन्य महाप्रभु के अनुगत कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग अनुगत्याभिमानी हैं वो तो नहीं जाने, महाप्रभु के परिकर होकर जो कहते हैं यह महाप्रभु जी के अनुगत, किंतु जानते नहीं हैं संबंध ज्ञान और न तो ये सब चीजों। रूपानुग कहते हैं किसको, सबसे अंतिम स्टेज में है, उसके बिना और सब ये सब चीजें नहीं लेते। तो जो लोग भागवत इत्यादि पाठ करते हैं और उसके विनिमय में ये सब लेते हैं तो उनका पाठ ही बेकार का हो गया। समझना भी बड़ा भारी कठिन है, पूर्व जन्म के संस्कार के बिना इन चीजों में प्रवेश ही नहीं होगा, हम लोग समझ ही नहीं सकेंगे इन चीजों को। बड़ा भारी कठिन चीज है रूपानुगत्व, वैसे तो रूपानुगुरु वर्ग की जय हम कह देते हैं। यहां पर जो हम लोगों का श्रीमद् भागवत का 9 दिन व्यापी जो हुआ, हम लोगों ने इसी तरह से यहां पर प्रवचन किया। यदि आज भारतवर्ष में ऐसे ही भागवत होने लग जाए ना तो फिर क्या हो जाए। हम लोगों में कभी भी हमारी गुरु परंपरा में सप्ताह भागवत की कोई विधि नहीं दी गई। कल मुझे बड़ी एक खुशी हुई, जो हम लोगों का वो जो संचालन कर रहे थे कुंज वल्लभ गोस्वामी, वो नृसिंह वल्लभ यहाँ के वृंदावन के सबसे बड़े भागवत के वक्ता थे, बहुत ही अच्छे विद्वान आदमी हैं नृसिंह वल्लभ, उनका पिताजी, उन लोगों से हमारा वो और वो विशंभर जी थे उनका लड़का, वो कुछ बिहारी जो पहला या दूसरे में बोला वही बड़ा सुंदर बोला। ये सब उनके पिताजी बड़े विद्वंधर वैष्णव और विद्वान, उन लोगों से हमारा खूब, तो उनका लड़का कह रहा था कि महाराज जी, मैंने कहा उससे ये आप ये मत समझिए कि हम लोग भागवत सप्ताह किया, हम लोगों भागवत सप्ताह ना किया, ये तो हम लोगों ने बड़सामिस किया। बड़सामिस मैंने किया, बड़सामिस न्याय किया, लोगों को टोप खेलने के लिए वो बंसी में मैंने लकड़ी में लगा करके वो एक जैसा लोहा का करके उसमें नदियों में छोड़ देते हैं तो वो निगल जाती हैं मछलियां और उनको पकड़ करके खाएं चले। तो हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद जी और ये सब हुए हैं, इन लोगों ने कभी भी भागवत सप्ताह नहीं किया। आप लोग भी भागवत सप्ताह मत करेंगे कभी, यदि झुक लोग ही होंगे। ये तो हमने उन लोगों को दिखलाने के लिए वृंदावन में एक आदर्श इसलिए हम लोगों ने किया। तो वो कह रहे थे हमारे पिताजी कभी भी सप्ताह नहीं करते थे और कभी भी हमको भी आदेश दे गए कि कभी भी खबरदार भागवत सप्ताह मत करना, कभी मत करना, इसीलिए मैं कभी भी नहीं जाता हूं। मैं सोच रहा था कि आपने कैसे ये किया, कहिए नहीं हम लोगों ने वैसा नहीं, उसमें कामना सकाम वासना हो जाती है। इसलिए सकाम वासना में यदि कोई कराए मत करना कभी, भक्ति को सकाम में कभी भी लेना मत, किसी भी स्थिति में। हम लोगों ने आप लोग भी भागवत सप्ताह में जा करके कराए और करेंगे या करेंगे? धीरे धीरे करो भाई, कभी भी सकाम भावना ना रहे, नहीं तो भक्ति ही नहीं होगी। और ब्रज की भक्ति की तो बहुत दूर की बात, कभी भी फल आकांक्षा तनिक भी इसमें कभी भी मत जाना। तो कल हम लोगों ने इसी प्रकार से किया, बड़े आनंद की बात है। वृंदावन के रसिक तत्वज्ञ और वैष्णव में भी बड़े बड़े उत्तम लोग, अथवा यही कहा जाए कि इस समय में गौड़ीय वैष्णव में जो हैं यहाँ वृंदावन में, ये सबसे उत्तम श्रेणी के ये लोग वक्ता भी हैं, वैष्णव हर जगह हरि नाम कर रहे हैं सब समय, ये सब वैष्णव। हमारा यही अभिप्राय था, ऐसे ऐसे वैष्णव लोग वक्ता लोग इसमें आए और तुम लोग भी कुछ सुनो और इनको ऐसे ही भजन करो और उन तत्वों को समझो, तब तो ये सार्थक होगा। कभी भी किसी भी स्थिति में भगवत भजन को कभी भी बेचना मत, नहीं तो उसको कभी भी भक्ति नहीं होगी। भगवान और गुरु और वैष्णव के नाम पर कोई भी चीज लेकर के भोगने की कभी भी कोई भी स्प्रिया यदि हुई तो गए रसातल को, वो भजन नहीं हो सकता है। कहां सब हम लोग त्याग करके आते हैं, इसमें कुछ लड़के हैं काफी रुपये पैसे पाते थे महीने में, इतने बड़े बड़े योग्य हैं, कोई सीए होने जा रहा है, कोई कुछ होने जा रहा है, कोई नेवी में काम कर रहा है, कोई को क्या क्या लात मार करके चले आए। लड़कियों में भी ऐसे सब लोग हैं, वैभव को लात मार दे, जगत के लोग नहीं समझते हैं इन लोगों की भक्ति होगी। इसलिए ऐसे ही हम निष्काम भी नहीं होंगे, निष्काम तो खप पुष्प है, निष्काम नहीं, वो तो उनको ठगने के लिए निष्काम शब्द कह दिया जाता है। यदि सबसे बड़ा कोई काम ही है तो हम लोग हैं, हम लोग उन जैसा कोई काम ही नहीं, अब विषय भी हैं, कृष्ण हमारा विषय है, कृष्ण से भी अभी कृष्ण के जो विषय हैं वो हमारे विषय हैं। कृष्ण का विषय कौन है? राधा जी, वो हम लोगों के विषय हैं। और कामी सबसे बड़ा, काम माने प्रेम, सबसे बड़े कामी हम लोग। कामी माने क्या? यदि कामना करेंगे तो ऐसा जिसकी कृष्ण कामना करते हैं उनकी सेवा हम कामना करेंगे, और बतलाओ तो इसे बढ़कर के क्या हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि हम लोग वैरागी नहीं है, त्यागी नहीं है, हम लोगों जैसा और कोई दूसरा नहीं है, हम लेंगे तो वही लेंगे, उसके नीचे का कुछ भी नहीं लेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, तब अपने भजन में किसी भी विषयी ज्ञानी कर्मी योगी इन लोगों को अपने मन में स्थान मत देना, इनसे कोई लालसा मत करना, इनको बल्कि किसी प्रकार से भगवान के भजन में लगाना, तब तो जीवन सार्थक होगा। तो कल हम लोगों ने, कल समाप्ति हुई, बड़े आनंद की बात हुई, सब वैष्णव लोग भी आए, संत लोग आए, अच्छी अच्छी बातें की, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, किंतु बात बहुत, सभी लोग अपने अपने वैशिष्ट के अनुसार में ये सब लोग आए, हम उसमें से थोड़ा सा वैशिष्ट आप लोगों को बतला दें।
को मन से सुन करके अपने हृदय में धारण किया। कल शिवानंद जी थोड़े से शब्द में बहुत अच्छा बोले। हमारे अतुल कृष्ण गोस्वामी वो भी अच्छे बोले। हमारे राधारमण वाले गौर कृष्ण गोस्वामी वो भी बहुत सुंदर बोले। किसी किसी का सभी लोग बड़े अच्छे अच्छे बोले। यही भागवत सप्ताह माने भागवत इसी को कहते हैं भागवत। आरा कल हमने कहा उसमें और भी वक्ता लोग करी करी। ये श्लोक बहुत सर्वोत्तम है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बधिवधु वर्गे न जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा कुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रागरो नह परह। तो याद कर लेना ये संक्षेप में हमारे चैतन्य महाप्रभु का ये उपदेश और विचार है संक्षेप में। और इससे थोड़ा सा और विस्तृत रूप में है अम्नाय प्राह तत्त्वम हरिमीह परमम। ये दोनों ही बहुत ही सुंदर। ये श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी का ये आराध्यो भगवान ब्रजेश समय। इसमें चार चीजें हैं। ये कह कौन रहा है, इसका विचार कौन है? एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहो या श्रीनाथ जी, श्रीनाथ चक्रवर्ती। श्रीनाथ चक्रवर्ती कवि कर्णपुर के गुरु थे। कब कर्णपुर यदि महाप्रभु जी का दर्शन किया तो उनके महाप्रभु जी के समसामयिक श्रीनाथ चक्रवर्ती थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने भागवत पर एक टीका भी की। खैर वैसा तो हम लोग नहीं सुनते हैं, तो भी जैसा हो ये वक्ता ये कहने वाले हैं प्रमाणिक व्यक्ति। इसमें चैतन्य महाप्रभु का विचार दिखलाया गया है। अधिकांश कवि कर्ण सूर्य गुरु इतना ठीक। श्रीनाथ चक्रवर्ती जो है कवि कर्णपुर के गुरु, तो कवि कर्णपुर तो महाप्रभु जी के समसामयिक हैं, तो वो भी और समसामयिक है। और दशम स्कंद की टीका खैर जैसा भी हो, हम लोग तो अभी तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही गुरु जी कहते थे। तो ये भी सिद्ध महापुरुष है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और चैतन्य महाप्रभु का ये विचार, तो महाप्रभु कौन है, कौन है? राधा भा। और उनकी अंग कांति उसी का आस्वादन करने के लिए आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न, ये तो पहली बात है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, एक चीज ये हुआ। श्रीमद् भागवतम प्रमाण, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भागवत ही एकमात्र प्रमाण है। और आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेश नंदन श्याम सुंदरी हमारे आराध्य, ये दो हुआ। भागवत प्रमाण एक, दूसरा हुआ कृष्णचंद्री हमारे तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, वो हमारे आराध्य हैं। और वृंदावन धाम है वो भी हमारा, जैसे कृष्ण आराध्य हैं वैसे वृंदावन भी हमारे आराध्य हैं। और रम्या काचित उपासना बधु वधु वर्गेन जा कल्पिता, ब्रज की वधुओं ने जो आराधना की है वही सबसे श्रेष्ठ रम्य, सबसे श्रेष्ठ रसपूर्ण उपासना। और प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम ही महान पुरुषार्थ, ये इसमें इसके विषय है। अब इसमें से श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण, श्रीमद् भागवत में भी स्वयं कहा गया और दूसरे समस्त शास्त्रों में भी कहा गया। अमल प्रमाण किसको कहेंगे, जिसमें अर्थ धर्म काम और मोक्ष इत्यादि की बातें न हो। यहां तक कि जैसे दूसरों पुराणों में अनात्म धर्म के संबंध में, जड़ धर्म के संबंध में कुछ देकर के शिक्षाएं दी गई हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में ये सब चीजें नहीं। मुक्ति तक को भी कुछ से समझ करके उसे दूर किया गया, और तत्वों की उपासना भी उसमें रख दी गई, उसमें नहीं लिया। जैसे और पुराणों में है, राधा जी ने सुबल को या श्री राम को अभी संपाद किया और उन्होंने उनको संपाद गोलोक ब्रज में, भागवत में ऐसी सब चीजें नहीं मिलेगी। चित्रकेतु महाराज इत्यादि का उपाख्यान बतलाया गया है, उसमें कुछ अभी संपाद की बात है, किंतु उस तरह से नहीं, गोलोक बैकुंठ की बात नहीं करते। नारद जी ने भी जमलार्जुन को अभी संपाद किया था। इन सब शिक्षाओं के लिए ये सब दिए गए, जो संतों के, संतों का क्रोध भी नारद जैसे लोग हैं, या समक्ष नंदन के क्रोध भी परम कल्याण का कारण बन जाता है, इसलिए ये सब चीजें दी। इसलिए इसमें कामना वासना इत्यादि की कोई बात नहीं, शुद्ध गोपी प्रेम या ब्रज प्रेम की ही बात है, इसलिए इसको अमल पुराण कहा। और भी बतलाया गया, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्मम आविष्कृतम तत्सुपठन सुपठन विचारण करो भक्त्या विमुच्यन्नर। ये श्रीमद् भागवत वैष्णवों का प्रिय है, और लोगों का ये ग्रंथ नहीं, और लोग किसी कारण से दूसरों को ठगने के लिए इसको पढ़ते हैं, या समाज में जहां जाएंगे भागवत की बातें नहीं करेंगे, उनको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अद्वैतवादी हैं, कर्मी हैं, ये सब योगी हैं, लोगों को ठगने के लिए ऐसा करते हैं, किंतु ये वैष्णवों का ही प्रिय ग्रंथ है। सुखदेव गोस्वामी भी वैष्णव हैं, व्यास जी भी वैष्णव हैं, इसलिए जद वैष्णवानाम प्रिय। जस्मिन पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, ये परमहंस ज्ञान किसको कहते हैं, एकम वही जो श्रीमद् भागवत के अंत में बतलाया गया है, कैवल्यैक प्रयोजनम, और ये दोनों एक है। वहां पर ब्रह्मात्मय कलोखनम जो बतलाया गया है, वहां पर इसी श्लोक के लिए ही वो ब्रह्मात्मय कलक्षणम दिया गया, जो जज्ञानम अद्वयम वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानम अद्वयम परमात्मे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, इसके लिए वो बतलाया गया कैवल्ये। अद्वै ज्ञान तत्व ही श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य है। भागवत के प्रतिपाद्य है क्या? अद्वै ज्ञान परतत्व। ये अद्वै ज्ञान परतत्व है कौन? जिसमें वो अद्वै ज्ञान परतत्व सच्चिदानंदमय है, वही सच्चिदानंदमय है। उनकी जब विकृति, विकृत सत, सत है सचित आनंद, उसमें ये चीत जो गुण है सचिदानंद में से, चित्त का विकृत आंशिक प्रतिफलन को ब्रह्म कहते हैं। विकृत वो भी शुद्ध नहीं, विकृत चित्त अर्थात विकृत ज्ञान वही ब्रह्म, जिसको भगवान के पदनख की छटा कहते हैं। और परमात्मा जो है वही अद्वै ज्ञान तत्व का जो सत और चित है उसका आंशिक प्रकाश है, उसको अंश कहते हैं। ये विकृत नहीं है किंतु आंशिक है सत और चित का। और भगवान इति शब्द से वही अद्वै ज्ञान परतत्व को ही भगवान कहते हैं, जिसमें सचित आनंद परिपूर्ण मात्राते हो। ये हुए भगवान। किंतु भगवान जो है सच्चिदानंद है, किंतु उनमें ऐश्वर्य प्रकाश बाहुल्य है। कल सुभानंद जी ने बतलाया था, अद्वै ज्ञान के लिए जीव गोस्वामी ने भी ये बतलाया, एकम एव परम तत्त्वम स्वाभाविका अचिंत शक्ति स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावशिष्यते। एक ही परतत्व वो ब्रह्म में, जैसे ब्रह्म के रूप में प्रतिफलित हुए, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। अब वही अद्वै ज्ञान परतत्व बहुत रूपों में जगत में होने पर भी चार रूप से मान लिए गए। एक तो स्वयं, स्वयं भगवान। ये स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और तद्रूप वैभव होता है दूसरा, भगवान के जितने भी अवतार हैं, राम नृसिंह कल्कि वामन द्वारकाधीश नारायण और जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो सब तद्रूप वैभव में हो गए, उन्हीं से निकले हैं। किन से? स्वयं रूप जो कृष्ण है उनसे निकले हैं, उन्हीं के प्रकाश हैं। ऐसा मत समझना कि राम और कृष्ण एक ही चीज है, तत्वतः एक है किंतु रसगत सब में वैशिष्ट है। कृष्ण को, कृष्ण अपने अंश से आंशिक प्रकार से रामत्व हो जाए, रामत्व भाव दिया, किंतु राम कृष्ण नहीं होंगे। इस चीज को समझना बहुत बड़ी भारी बात है। कृष्ण में केवल अढ़ाई गुण हैं, अढ़ाई रस, राम और नारायण सभी नहीं, कृष्ण में राम और नारायण में ढाई रस है। और कृष्ण में कितने हैं? 12 हैं परिपूर्णतम मात्रा में। इसलिए रामत्व कभी कृष्णत्व नहीं हो सकता, कृष्ण में राम है, ये बात ठीक। भले ही ओ राम वाले संप्रदाय इस पर चिढ़ जाए, किंतु भागवत का ऐसा ही विचार है और आप लोग दृढ़ता से इस चीज को समझेंगे। यहां तक कि द्वारकाधीश में भी ये सब पूर्ण रस नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण है और यही स्वयं भगवान कृष्ण ही ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजे सतनय। दूसरी बात, ये ब्रजेश तनय समस्त रसों के विषय हैं, आश्रय नहीं है। कभी कभी आश्रय भी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं। द्वारकाधीश में आंशिक रूप में कभी कभी बात्सल्य रस के आंशिक वो विषय हो जाते हैं, आश्रय हो जाते हैं कभी, वो लाल्य की भांति, किंतु उसको गौण समझो, बहुत गौण, किंतु यथार्थतः में नंद जशोदा का कृष्ण के प्रति बात्सल्य ही श्रेष्ठ है। तो वो कृष्ण ब्रज में किसी के पिता नहीं होंगे, किसी के मैया नहीं होंगे, यदि करेगा तो वो रसाभास इत्यादि में आ जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण सदा सरसों के विषय हैं यहां ब्रज में। कभी कभी श्रीमती जी की जब वो आराधना करते हैं तो वो प्रेम के आश्रय बन जाते हैं, राधा जी विषय बन जाती हैं, किंतु वो सब कम है, बहुत अल्प ही है। किंतु श्रीमद्भागवत का यही वर्णन का विषय है, वही इनका प्रतिपाद्य का विषय है। इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः, वृंदावन भी वैसे ही उनका आराध्य है हम लोगों का। ये वृंदावन है कौन? कृष्ण ही है। कहते हैं कि ये सत स्वरूप है ना, बलदेव जी सत के संधिनी के अधिष्ठात्री, किंतु बलदेव जी अपने बलदेव रूप में नहीं, इसलिए इस रस का आस्वादन करने के लिए ब्रज बन जाते हैं। जैसे उधर में बन जाते हैं अनंग मंजरी, उसी प्रकार से ये ब्रज बन जाते हैं, वैसे स्वयं धाम स्वरूप बन जाते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए और समस्त रसों में सेवा करने के लिए। नहीं? अब उसमें देखो, अक्षमतां फलमिदं न परम विदां, ये कहां का वर्णन है? वृंदावन का। कृष्ण गोचारण करने के लिए निकल रहे हैं और जब निकल रहे हैं तो सखा लोग उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और गौओं को लेकर के चल रहे हैं वृंदावन में गोचारण के। ब्रजेश सुतयो अनुबेनु जुष्टम, कृष्ण और बलदेव को जो यहां पर कहा गया, ये जो कहा गया किस लिए? ये गोपियां अवहित्था कर रही हैं, अपनी को छिपा रही हैं कृष्ण को भाव से, अवहित्था से छिपा रही हैं, मैंने क्या छिपा रही हैं? कृष्ण और बलदेव को दोनों को सामने ला करके और लोगों को ठग रही हैं, दूसरों को समझने नहीं देती। ये कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, इसलिए वो कह रही हैं ब्रजेश तनयो, साधारण रूप में, किंतु यहां पर वो भाव नहीं। यहां पर कृष्ण और बलदेव दोनों उद्देश्य नहीं है, बल्कि बलदेव जी के रहने से उनका प्रेम संकुचित हो जाएगा, विजाति जैसा हो जाएगा ना? इसलिए जहां पर महाप्रभु जी राधा भाव से आविष्ट होते हैं वहां पर नित्यानंद प्रभु जी उनको स्पर्श नहीं करते हैं, बहुत दूर से रहते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु जी उस रूप में वृंदावन बने हुए हैं और एक रूप से चले जा रहे हैं, सखरस इत्यादि से या बात्सल्य से उनकी सेवा भी कर रहे हैं, किंतु वहां पर जो बताया गया जो बलदेव जी आगे आगे चल रहे हैं, अनुबेन जुष्टम, जो पीछे चल रहे हैं और जिनके मुखारविंद में बेणु है, उनके आंखों से जो कटाक्ष निकल करके करुणाभरा कटाक्ष गोपियों के तरफ में आ रहे हैं, उनके इस कटाक्ष को जिसने नहीं देखा उनको आंखों का रहना व्यर्थ है, वो आंखें नहीं रहती तो अच्छा। आंखों का सबसे यही सबसे श्रेष्ठ फल है, इसके अतिरिक्त हम नहीं जानती जो और कोई दूसरा फल हो सकता है। उस कृष्ण को जो कि पीछे पीछे चल रहे हैं मुस्कुराते हुए मंद मुस्कान से बंसी बजाते हुए गोपियों की तरफ में देख रहे हैं। और गोपियां क्या कर रही हैं? नैनोत्पलाकित तनुम वो गोप्रसंगावृतम, गोपियां अपने नैनों से उनकी आरती उतार रही हैं। इसको जिसने नहीं देखा उसका जन्म दिखा गया, उसकी आंखें दिखा गई, किंतु गोपियों का यह भाव भी नहीं, इससे भी ऊपर कुछ है। उसी के लिए वो बतलाया गया था सुतस्य सुतास्य सुतयो। यहाँ पर ब्रजेंद्र सुतयो माने बलदेव और कृष्ण दोनों अभीष्ट नहीं, यहाँ पर तो अभीष्ट हैं, अभीष्ट हैं श्रीमती जी ने? और बलदेव के साथ वो देखना नहीं चाहती, वो देखना चाहते हैं कि राधा जी और कृष्ण हो, और उसमें राधा जी के तरफ वो कटाक्ष पास कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रेम भरी रूप में, किस रूप में देख रहे हैं, और राधा जी भी उनके तरफ में किस रूप में देख रहे हैं। बंसी करान निपतिता खलितम शिखंडम भ्रष्टंच तीस बटनम ब्रजराज सुनो जस्या कटाक्ष सर्घात निम्बुत संग राधिका परशुरामी सदारते। मैं राधा जी की रस पूर्वक कब उपासना कर सकूंगा, उनकी सेवा कर सकूंगा या कर सकूंगी, किस कृष्ण की और उनकी, जब कृष्ण राधा जी के दर्शन मात्र से ही उनके उनकी बंसी हाथों में से फिसल गई। मोर मुकुट क्यों गिर गया? कांपने लगे ना, श्वेत कंप इत्यादि होने लगा, जब ऐसे ऐसे जब होने लगा तो वो गिर गया। और कृष्ण का पीताम्बर भी जो यहां था न जाने कब खिसा करके नीचे गिर गया। और सबसे अनहोनी बात तो ये हुई कि राधा जी के कटाक्ष से कृष्ण स्वयं मूर्छित होकर के गिर पड़े। गोपियां इस चीज को देखना चाहती हैं इस श्लोक के अंदर में भी, इसलिए वो कह रही ब्रजेंद्र सुतयो। अतः ब्रजेंद्र जो नंद बाबा हैं उनके पुत्र कृष्ण और बरसाना के जो विश्वभानु महाराज हैं उनकी सुता अर्थात विश्वभान नंदिनी, ये इन लोगों के लिए सुतयो शब्द का प्रयोग होगा। ब्रजेंद्र सुतयो अनुबेनु जुष्टम, इस प्रकार से वो बंसी बजा रहे हैं उनके साथ में और उनके कटाक्ष। इस प्रकार से ये वृंदावन में देखो तो कितना मधुर भाव, यहाँ पर ऐसी लीलाएं हो रही हैं, ये वृंदावन धाम है, ये कृष्ण से अभिन्न है। और रंध्रान अधर सुधया रंध्रान अधर सुधया उगयन गोपवृंदई वृंदारण्यम शपद रमणम। यहां पर देखो वृंदावन है, यह वृंदावन साधारण है, जहां पर कि अपने चरण में कितने प्रकार के चिन्हों को लेकर के और इसी रूप में चले जा रहे हैं वृंदावन, इसलिए वृंदावन उनसे अभिन्न है। और भी एवं विधा भगवतो जा वृंदावन वृंदावनचारिण, यहाँ वृंदावन में विचरण करने वाले ये कृष्ण। सबसे अच्छी बात तो मधुर बात तो ये है, वनन चत कोमल गोभी रंजित जगम कलऊ मनोहर बाम दृशा मनोहर। वृंदावन का ये सबसे सुंदर वर्णन है। वनन च वनम माने क्या, वृंदावन वृंदावनम च कोमल गोभी रंजितम, कोमल गोभी गोभी माने किरण भी, उनके किरण से रंजित है वृंदावन। किन के वहां पर सभी उपेक्षा करके चंद्र की किरणों की उपमा दे रहे हैं वृंदावन में, किंतु यहां पर समझ रहो ये कृष्ण ही चंद्र हैं और उनमें से कोमल किरणें जो निकलती हैं कृष्ण का हास्य इत्यादि है और ये सब चीजें, और वृंदावन को माने गोपियों को अपने प्रेम से उनको रंजित कर रहे हैं कृष्ण।
ये असल में तात्पर्य है। जगम कलौ मनोहर वाम दृशा मनोहरा, जगम कलौ क और र मिलकर के बजाया अपने बंसी में, वाम दृशा बतलाया दीर्घई अ आ ई ई, स्वर वर्ण के चतुर्थ अक्षर इसको कहते हैं वाम दृशा व्याकरण में। वाम दृशा और सही क और ल मिलकर के और इकार हो गया क्ली, और उसमें लग गया मनोहरा। मनोहर माने किसको कहते हैं? मन। मन के अधिष्ठात्री देवता है चंद्र, ऐसे चंद्र माने, और वो तो हो गया ऐसे, और उसमें और मिल गया मनोहर बिंदु, चंद्र बिंदु हो गया। इसको जगऊ जिस वृंदावन में, ऐसा ये वृंदावन है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीना, नंद ब्रज किसको कहते हैं? नंद ब्रज किसको कहते हैं? नंद जहां पर रहते हैं उसको कहते हैं नंद ब्रज, अर्थात वृंदावन ही। तो यहां पर भी पादरेण अभिक्षण, यहां पर भी वही बतला गया, और अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसा, वहां पर भी ये वृंदावन के ही संबंध में ये सब बतला रहे। अतएव जहां पर भी श्रीमद्भागवत में वर्णन किया गया, ये कृष्ण की लीलाएं कृष्ण को छोड़ करके हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए ये वृंदावन जैसे कृष्ण हमारे आराध्य हैं, ये वृंदावन भी हमारा। ऊपर से तो कृष्ण बाह्य रूप से इसको छोड़ करके चले गए, किंतु वृंदावन सब वृंदावन का ही। तो देखो कृष्ण से कम वृंदावन को मत समझना। वृंदावन मम पावनम समेव, वृंदावन मम जीवनम समेव, वृंदावन मम भूषणम समेव, वृंदावन मम सर्जस। वृंदावन हमारे कृष्ण जैसे ही आ रहा थे। यदि कृष्ण चले गए बाह्यतः, किंतु राधा जी नहीं गई, गोपियां नहीं गई, ब्रज का कोई भी नहीं गया वृंदावन को छोड़ करके, इसलिए वृंदावन ही हमारे कृष्ण जैसे ही आराध्य। और रम्या काचित उपासना बधु बधु वर्गे में जाकल पिता, रम्या काचित, काचित माने क्या? कोनो एक ना, कोनो एक कौन? गोपी। देखो काचित उपासना में ही ये सब कुछ आ गया। गोपियों की आराधना कृष्ण के प्रति यही सर्वश्रेष्ठ है, यह बात तो ठीक है, गोपियां जैसे आराधना, इसलिए ये सब जगह आसाम हो चरण रेणु सामहन इत्यादि का है। किंतु उसका उद्देश्य क्या है? काचित, ये काचित कौन है? श्रीमती जी है। सब लोग कृष्ण की आराधना करते हैं, कल इसने भी बतलाया, गोपियों की आराधना से सही, यह बात ठीक है, गोपियां कृष्ण की आराधना करते हैं, किंतु कृष्ण क्या करते हैं? इनकी आराधना करते हैं। कल इस श्लोक में ही बतलाया गया, कृष्ण ने आराधिता, राधा जी ने कृष्ण की सबसे अधिक उपासना की, यह बात तो ठीक है, किंतु कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं श्रीमद्भागवत में, जहां कभी भी आया है राधा जी के ही उपासना वो करते हैं।
राधा जी सबसे ज्यादा
यही है, राधा जी
को प्राप्त
होगा, राधा जी को प्राप्त होगा। वहां पर लब्धा शिक्षा जो शब्द का अर्थ किया गया विद्वत रूढ़ी से, लब्धा आशीषा माने कृष्ण ने प्राप्त किया क्या? वहां पर आशीष देने वाली कोई दूसरी है, वहां श्रीमती जी हैं।
अघरिपुरपि जत्नात् अद्रदिव्या प्रसादात् प्रसृतिः कटाक्षप्राप्ति कामः प्रकामम् अंशवृजति उच्च स्नान सेवानुबन्धो तदपि सुरभिराधा कुण्डम् आश्रयो। यहाँ पर भी इस श्लोक में यही है, कृष्ण जी भी सन्न हो गए और राधा कुंड के तट पर जाकर के आराधना करने लगे, नित्य प्रतिदिन सवेरे स्नान और उन्हीं का स्मरण। सब जगह यही देखो, प्रेम की ऐसी मधुर महिमा है, इसलिए प्रेम प्रयोजन है। जहाँ प्रेम अधिक रहेगा वहां पर श्याम सुंदर भी पर ब्रह्म होते हुए रसिक शेखर होते हुए भी महाभाव की आराधना करने लगते हैं। ये प्रेम की महिमा है, इसीलिए ये बतला रहे हैं प्रेमा कुमर्थो महान। हम लोगों के लिए कृष्ण आराध्य नहीं है, यदि प्रेम नहीं है तो कृष्ण हमारे जैसे कैसे हो जाएंगे। कंस ने कृष्ण को देखा, प्रेम नहीं है, शत्रु रूप में देख लिया। जरासंध ने भी तो कृष्ण को देखा किंतु वहां प्रेम नहीं है, इसलिए उनकी आराधना नहीं करता है। यदि प्रेम न रहे और कृष्ण सामने भी आए तो अपराध कर बैठेंगे, इसलिए प्रेम यदि है तो कृष्ण आराध्य है, अन्यथा नहीं। इसलिए श्रीमद्भागवत में बतलाया गया जो यह प्रेम ही आराध्य है, वही हमारे लिए मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम सबसे अधिक फल है। किंतु इसमें भी हमने बतलाया एक प्रेम कृष्ण के अंदर और एक प्रेम आश्रय।